शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहिए ओम शांति, दिल से कहिए ओम शांति, थोड़ा मुस्कुराकर कहिए ओम शांति, थोड़ा आवाज को बुलंद करके कहिए ओम शांति। क्या
तेलुगु फ्रीक्वेंसी है 92 और तमिल फ्रीक्वेंसी है 100।
पहले तीन ओम शांति में लग रहा था कि आपने नाश्ता नहीं किया है, लेकिन फिर चौथे ओम शांति में इस बात की खुशी हुई कि आपने नाश्ता किया हुआ है। गुड। नमस्ते। हाथ तो जोड़िए, बिना हाथ जोड़े नमस्ते कंप्लीट नहीं होता है। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड है, क्यों गुड है? हां जी, एवरीथिंग इज फाइन। और गुड क्यों है? हां जी, सुबह सुबह ज्ञान मिला है, ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना? इसके पहले कभी गुड था ही नहीं, क्योंकि ज्ञान किसी ने दिया ही नहीं हमको, ये बहुत अच्छी बात है। और क्यों मॉर्निंग गुड है? हां जी, अच्छा, क्या बात है भाई साहब, थोड़े पीड़ित लगते हैं, रोजमर्रा की जीवन से मुक्त है यहां आकर, अच्छा लग रहा है। नौकरी से पीड़ित, घर वालों से पीड़ित, बच्चों से पीड़ित, बॉस से पीड़ित, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस को करना, उन सब से पीड़ित है, इसलिए यहां तीन दिन मस्त रहेंगे, खाएंगे पिएंगे आनंद करेंगे, इसीलिए मॉर्निंग गुड है, बहुत अच्छा। चलिए, हां, जोर से ताली बजा दीजिए भाई साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं कहा, आप सबके लिए भी कहा है, ठीक है? इसीलिए आप बहुत ज्यादा खुश मत होइए, आपके लिए भी अप्लीकेबल है, सही कह रहा हूं ना भाई साहब? बिल्कुल ठीक है। मेरा मॉर्निंग भी बहुत गुड है, इसलिए गुड है क्योंकि बहुत अच्छा किसी शायर ने कहा है, बगिया में खिले फूलों से ही मौसम में बसंत बहार है, बगिया में खिले फूलों से ही मौसम में बसंत बहार है, आप सबके सभा में होने से ही सभा में उड़ती फुहार है, सभा में महक है, खुशबू है, रौनक है, आप सभी के आने से ही है, ठीक है? आज का हमारा जो विषय है वो है इनर पावर फॉर सेफ्टी, बाहर पावर नहीं, इनर पावर फॉर रोड सेफ्टी। वैसे भी किसी भी शुभ कार्य के लिए हम देवी देवताएं भगवान को याद करके ही शुरुआत करते हैं, ठीक है? एक बार शुरू करें, भगवान को याद कर लें, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसमें सब कुछ है, उन देवी देवताओं का आप स्मरण कर लीजिए और उन देवी देवताओं को याद कर लीजिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये देख लीजिएगा कि वो देवी देवताएं क्या कर रहे हैं, ठीक है? उनको ही हम फॉलो करेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं चाहता हूं कि हम ये वीडियो देखें और उसके बाद हम ये आज के इनर पावर की शुरुआत करें। ये लाइट्स थोड़ा बंद करेंगे यहां का स्टेज का, ताकि आपको थोड़ा अच्छी तरह क्लैरिटी आ सके, अच्छा रहेगा ना? देवी देवताओं को याद करके शुरुआत करें, वेरी गुड। भी बिना हेलमेट पहने काम पे नहीं जाते हैं देवी देवताएं, समझ में आया? आप सबको समझ में आया? वो जो भी देवी देवताएं थे उनका वाहन भी आ गया, गाड़ी भी रेडी हो गया, सब उसका जो सिस्टम था टेक्निकली सब साउंड था, पेट्रोल भी था, ब्रेक भी अच्छा था, हॉर्न भी, लेकिन गाड़ी आगे जा ही नहीं रहा था, उन्होंने ड्राइवर को इशारा दिया, भैया हम आगे जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि हेलमेट नहीं पहना था। हम लोग ऐसा करते हैं क्या? वैसे तो मेरा टॉप फ्लोर थोड़ा खाली है, लेकिन फिर भी मुझे बालों की बहुत चिंता होती है, मैं हेलमेट पहनता नहीं हूं। पता है क्यों? क्योंकि बाल का स्टाइल खराब हो जाएगा। हमको तो फिर दिखाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो देवी देवताएं भी बिना मुकुट के आगे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर हम कैसे जाते हैं? ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एक मिनट, महेश भाई इसको जरा वो करिए, मिनिमाइज। हाउ डू वी डू इट? एस्केप से नहीं हो रहा है। कौन सा बटन दबाया? विंडोज एंड डी। ठीक है, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं और फिर हम ठीक है, ये है इनक्रेडिबल इंडियन ट्रैफिक। देवी देवता को तो हमने स्टैंडर्ड्स देख लिया है, वर्तमान परिस्थिति भी देख लेते हैं और उसमें हमारा क्या रोल है उसको भी थोड़ा सा हम पहचान लेते हैं। ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में है, कितना ट्रैफिक का पालन हो रहा है, कितने लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। सिस्टम देख रहे हैं ना कितना अच्छा है। आप लोगों को कुछ कुछ याद भी आ रहा होगा अपने शहरों का हाल चाल, हम जब गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा ही कुछ कुछ होता होगा, हम सब अनुभवी भी हैं। ये भाई देखो कैसे जा रहा है, मतलब उस भाई की बात नहीं, हमारी भी बात है, हम भी कैसे शॉर्टकट ही ले लेते हैं कभी कभी। कुछ ठीक हो सकता है क्या? सुधर सकता है ये सब? नहीं, वो कार देखो कितना अच्छी तरह सामने से लेकर गया। मैं प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है, विथ एविडेंस आपको बता रहा हूं। चलिए एक और वीडियो दिखा दूं, थोड़ा सा हम कंपेयर भी कर लेते हैं। अगर हमको ऐसा ही लगता है कि सारी दुनिया ही ऐसी है तो ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा कंपैरिजन कर रहा हूं। मैं बहुत ही अच्छा अपने आप को भारत का नागरिक समझता हूं और मुझे भारत के प्रति बहुत आस्था भी है और विश्वास भी है। मैं किसी तरह मेरे इंडियननेस को या आपके भारतीयता को बिलिटल नहीं कर रहा हूं, बस एक कंपैरिजन स्टैंडर्ड बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम कहां पर है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम का ही पता नहीं है तो फिर सॉल्यूशन फिर कहां हम ढूंढ सकते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा एक कंपैरेटिव एनालिसिस दे रहा हूं, मैं किसी भी प्रकार से आपका और मेरा भारतीय इंडियननेस को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट एक स्टैंडर्ड को बताने का प्रयास कर रहा हूं। इट कुड बी एनी अदर कंट्री वर्सेस इंडियन, मैं उसको थोड़ा ट्रैफिक रूल्स, अगर बस में चढ़ना हो तो फिर क्यू में. ये हमारा क्यू है. बस के ऊपर भी चढ़ जाते. ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग. जो इमरजेंसी जो एम्बुलेंसेस होते हैं उनके लिए जो स्पेशल लेन होते हैं, किसी भी कीमत पर कोई दूसरा नॉन इमरजेंसी व्हीकल. पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो होता है, मतलब जो पेडेस्ट्रियन है वो उसी रास्ते से ही क्रॉस करेगा जहां उनको क्रॉस करना है, और हम तो हमारा शॉर्टकट देख के क्रॉस करेंगे जैसे कि सड़क मेरे लिए ही है. आप सब रिलेट कर पा रहे हैं ना? ये भारतीय वो क्रिस क्रॉस डायगोनल लेन कटिंग, एक लेन से दूसरा लेन में जाने के लिए. अगर राइट टर्न होना है तो राइट लेन वाले ही राइट टर्न क्रॉस करते हैं. हमारे साथ भी ऐसा होता होगा. बस के पीछे भी भागना शुरू कर देते, आधा किलोमीटर में दौड़ के भी चढ़ जाते. अगर स्कूल है या हॉस्पिटल है तो वहां थोड़ा वहां नो हॉर्न का साइन बोर्ड है, लेकिन शायद फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं. चलिए बहुत बहुत एक बार ताली बजा दीजिए. बहुत अच्छा. किसके लिए बजाया? मेरे लिए? अच्छा, जिसने बनाया उसके लिए। चलिए ठीक है, कुछ कुछ बातें रिलेट कर पा रहे हैं, हमारे जो आम जिंदगी में जो होती है घटनाएं होती है या किसी और पर भी जो घटनाएं घटती है वो सब हम देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, केयर फॉर योर हेड, नॉट एवरी वन गेट्स अ रिप्लेसमेंट। गणपति जी को तो सौभाग्य था कि उनको रिप्लेसमेंट मिल गया, हमको शायद रिप्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा। इनर पावर्स फॉर सेफ्टी, इसको थोड़ा सा हम सेफ्टी को समझने का प्रयास करते हैं। और मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप भी अपने विचार व्यक्त करें, जरूरी नहीं है जो गिरीश भाई कहे वही राइट हो, हो सकता है मेरे में भी कुछ कमियां हो। और आप क्योंकि इस फील्ड से रिलेटेड हैं, आप बहुत अनुभवी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, आप भी अपने इनपुट्स दे सकते हैं। नॉट नेसेसरली हम सब मिल करके हमारे जीवन में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन, खुद के और दूसरों के जीवन में भी वैल्यू एडिशन हम कर सकें, वो हमारा ये प्रयास है। करंट अगर मैं आपसे पूछने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मैं राइट हूं या आप गलत हैं, क्या लगता है कि सेफ्टी, रोड सेफ्टी जो आज एक ग्लोबल यू नो एपिडेमिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको करार किया है, इस संसार में जितने लोग बीमारियों से मरते हैं उससे कई गुना ज्यादा सुरक्षा के कारण या फिर रोड एक्सीडेंट्स में या दुर्घटनाओं में उनकी मृत्यु होती है, क्या कारण हो सकता है? हाँ जी, एक कारण भाई साहब बता रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेवारियों को अच्छी रीति नहीं निभाते हैं, हमारे जो ड्यूटीज हैं भाई साहब जी 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 एक बहुत अच्छा, बिल्कुल या जी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। सर कह रहे हैं कि जैसे उस वीडियो में दिखाया इतना भी बुरा हाल नहीं है, सर बहुत पॉजिटिव हैं कि वी आर लिटिल, इतना वर्ड्स नहीं है, बेटर है। दूसरा कंडीशन हमारे रोड के डिजाइन के, जो पॉपुलेशन है जो इतना ज्यादा क्या बोलते हैं उस पर प्रेशर आता है रोड पे, गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं, सड़कें इतनी छोटी हैं, वो भी इस प्रॉब्लम को कंपाउंड कर देता है, उसको बढ़ा देता है। वंडरफुल, ठीक है। हाँ सर प्लीज। ओ वंडरफुल, सर ने बहुत अच्छी बात कहा, सेल्फ डिसिप्लिन इज ऑल्सो मेजर इशू। भल कैसे भी बाह्य जगत की परिस्थितियां हो, खुद पर स्वयं पर नियंत्रण और कंट्रोल ना होना वो भी एक कारण हो सकता है। सर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जो भी वाहन चालक हैं जो रोड पे चल रहे हैं चला रहे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। हाँ जी, पेशेंस की कमी है, बहुत अच्छी बात कही सर, अच्छी नहीं है। जो सार्वजनिक व्यवस्था है वाहनों का वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है भाई साहब। हाँ जी, लॉस तो बना दिया है लेकिन उसका अमलीकरण नहीं है, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, हमारे में ईगो भी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है। वैसे फोर ईज कहते हैं इस प्रॉब्लम को। हाँ सर बताइए। हाँ जी, तभी होता है, करेक्ट सर, टू गुड। रोड पे आने के बाद हमको समय का एहसास होता है, वैसे देर से उठेंगे चलता है, देर से खाना खाएंगे चलता है, थोड़ा टीवी ज्यादा देख लेंगे चलता है, घर से ज्यादा देर से निकलेंगे चलता है, लेकिन सड़क पर जल्दी जल्दी करना बहुत जरूरी है सर। भी है, बहुत अच्छा। कोर्ट का निर्देश हो चुका है कि हाईवे से इतने किलोमीटर के अंदर पर वाइन शॉप या लिकर शॉप नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी वो शॉप है, चलता है, लोग पीते हैं और खरीदते भी हैं और उसके सेवन करने के बाद चलाते भी हैं। मुझे एक छोटा सा संदर्भ याद आता है, फोर ईज की जब हम बात कर रहे हैं तो एक ई होता है जिसको हम कहते हैं एजुकेट करिए लोगों को, पर शायद हम सब अपने अपने रीति से अलग अलग प्रोग्राम्स के द्वारा हर वाहन चालक को हम बताते हैं कि आपको सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज एजुकेशन। तीसरा है जिसको हम कहते हैं एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट माना हम कड़े कानून नियम पास करें, अगर जो भी उसका उल्लंघन कर रहा होगा उसको हम सीवियरली पनिश करें। तीसरा जिसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग, गाड़ी को बहुत अच्छा बनाएं, सड़कों को बहुत अच्छा बनाएं, जिससे कि जैसे कि उसमें पॉट होल्स ना हो, अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो इंपैक्ट इंजरी का थोड़ा कम हो जाए, उसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं। जो फोर्थ ई है जिसके लिए आपको यहां पर बुलाया गया और जिस क्षेत्र में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उनका विशेष ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग पिछले कई वर्षों से इस कार्य को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, वो फोर्थ ई है जिसको हम कहते हैं एम्पावरमेंट। और अगर ये एम्पावरमेंट हमारा स्वयं में सशक्तिकरण आ जाएगा तो बहुत कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं, भले बाकी तीनों में जितना भी ऊपर नीचे हो या ना भी हो। अर्थात मैं जिस विषय को लेकर जा रहा हूं वो है सेफ्टी इज अ बिहेवियरल इशू, इज नॉट अ टेक्निकल इशू, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक एज वेल एज बिहेवियर। अगर मैं आपसे पूछूं सुरक्षा में ज्यादा परसेंटेज बिहेवियर का इनपुट आता है या फिर टेक्निकलिटीज का आता है, बिहेवियर का ज्यादा है, टेक्निकल भी है, लेकिन जो परसेंटेज में अगर हम कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे कि बहुत ज्यादा बिहेवियरल चेंजेस अगर हम लेकर आ जाएं तो बाहर पॉलिसी में टेक्निक में थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए तो भी हम बहुत अच्छी तरह सुरक्षित रह सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हम ऐसे ही सड़क सुरक्षा का प्रोग्राम करने के लिए पंजाब में प्रोग्राम कर रहे थे, पंजाब हरियाणा में, तो वहां हमें एक ऐसे जगह बिठा दिया गया और फिर कहा कि आपको इन लोगों को एड्रेस करना है। हमने कहा ठीक है, हम पहले ही पहुंच गए थे और वहां हमने देखा कि पूरी माताएं बैठी हुई है, एक भी भाई नहीं। अब मुझे ये थोड़ा संकल्प चलने लगा कि उसमें से शायद 80% माताएं साइकिल भी नहीं चलाती होंगी, अब इनको मैं सड़क सुरक्षा कैसे समझाऊं, अब गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, साइकिल भी नहीं चलाते होंगे, अब इनको सड़क सुरक्षा सोच रहा था। तो मैंने अचानक माताओं को कहा आप लोग तो शायद गाड़ी नहीं चलाते होंगे, उन्होंने कहा हम नहीं चलाते। हमने कहा लेकिन दूसरों के गाड़ी चलाने से आपको थोड़ी चिंता होती है, उन्होंने कहा बहुत होती है। हमने कहा किसको लेकर चिंता होती है, तो एक माताजी ने कहा गिरीश भाई मुझे मेरे बच्चे के गाड़ी चलाने के तरीके से बहुत टेंशन होता है, बहुत मुझे डर भी लगता है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, बोला जिस दिन उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिला, वैसे तो उसके पहले से ही वो गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था, लेकिन जिस दिन उसको सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया वो चारों हाथ पांव से वो गाड़ी चलाता है। मैंने कहा मतलब, बोला इतना तेज गाड़ी चलाता है मुझे बहुत डर लगता है गिरीश भाई, प्लीज मुझे आप थोड़ा हेल्प करिए। मैंने कहा लेकिन फिर आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा गिरीश भाई बोल बोल के थक गए, डरा के देख लिया, धमका के देख लिया, प्यार से देख लिया, रिवॉर्ड देके देख लिया, पनिशमेंट हर तरीका अपना लिया, लेकिन वो गाड़ी बहुत तेज चलाता है, समझ में नहीं आता कैसे सुधरेगा। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा आप बताइए आपको क्यों बुलाया है यहां पर, आपसे ही सुनने के लिए हम आए। तो मैंने कहा मैं क्या बता सकता हूं, तो अचानक मुझे लगा कि शायद हम माताओं की मदद कर सकते हैं। जो मैं बिहेवियर की एटीट्यूड की बात कर रहा था, इट्स एवरीथिंग टू डू विथ इनर पावर्स। मैंने कहा माताजी पता है प्रॉब्लम कहां है, उन्होंने कहा बताइए कहां है। मैंने कहा प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। उनको आया गुस्सा, बोला ये तकलू उल्टा मेरे को ही सुना रहा है, मैं तो इनसे सुनने के लिए आई थी ताकि वो मेरे बच्चे को ठीक करे, ये उल्टा मुझ पर ही दोषारोपण कर रहा है। बोला कैसे, मेरी गलती कैसे है। मैंने कहा माताजी थोड़ा सुन लेना, उसके बाद बताना जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ भी सत्यता है या नहीं। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस हाथ आने तक आपने एक ही डायलॉग पिछले 18 साल तक उसके कानों में भरा, पता है क्या बोला बचपन से लेकर, जल्दी उठ, जल्दी नहा, जल्दी होमवर्क कर, जल्दी तैयार हो, जल्दी खाना खा, जल्दी जल्दी पढ़, जल्दी जल्दी क्लास वर्क चल। 18 साल तक सब कार्य 24 घंटे में 25 घंटे जल्दी 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 जल्दी, और जिस दिन गाड़ी हाथ में आया धीरे गाड़ी चलाना, अरे ये कैसे हो सकता है। 18 साल तक अंदर जा चुका है, एवरीथिंग हैज टू बी विद स्पीड, सफलता भी जल्दी चाहिए, संसार में ऐसा कोई चीज नेचुरल नहीं है जो जल्दी होता है, सब चीज समय अनुसार होता है। सूर्य देव भी अपने समय अनुसार उगेगा, अपने समय अनुसार अस्त होगा, आपके और मेरे मर्जी से नहीं चलता है। लेकिन हम जीवन को अपने मान्यताओं के अनुसार, वो भी इतनी गलत और इतनी घटिया मान्यताओं के अनुसार जीवन चलाने का प्रयास करते हैं, उसका ही रिजल्ट है कि आज हमारे सड़कों में, भले मेरी भी आदत हो गई है क्योंकि हर चीज जल्दी, दूसरों को भी जल्दी से करा रहे हैं, खुद भी जल्दी से चल रहे हैं, बस सड़क पे धीरे धीरे, तो एक घंटे के लेक्चर में धीरे धीरे, बाकी 23 घंटा और जिंदगी भर हर कार्य जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं हो सकता है। सेफ्टी को थोड़ा सा समझने की बहुत सारा जरूरत है। इट विल नेवर हैपन टू मी, ये पता है स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट था कैप्टन ईजे स्मिथ, ये था कैप्टन ऑफ द टाइटैनिक शिप, जो पहले मेडन वॉयज के पहले प्रेस वालों को, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी सेवन स्टार होटल ऑन शिप, और उनका मानना था ये शिप कभी डूब नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके इंजीनियर्स ने बनाया हुए शिप को इतना अच्छी तरीके से था, इतना अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ था, जिसको कहते थे डबल हल कंस्ट्रक्शन। अगर इन दी इवेंचुअलिटी एक्सीडेंट हो भी जाएगा ना, तो बाहर का हल डिस्टर्ब होगा, अंदर का हल, उसका जो बॉडी है वो रहेगा, एंड द शिप विल ऑलवेज फ्लोट ऑन वॉटर, इट विल नेवर हैपन टू मी। और इतिहास गवाह है, हम सब जानते हैं, पहले ही यात्रा में वो शिप अपने यथार्थ डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाया, इट सैंक। अगर उनके साथ अगर हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। ये मान्यता अपने आप में थोड़ा सा ठीक नहीं है कि इट विल नेवर हैपन टू मी। क्यों? क्योंकि पिछले 44 इयर्स से ये गिरीश, मैं बहुत ट्रैवल करता हूं प्लेन में, ट्रेन में, सड़कों में, साइकिल में चला करके, आज तक भगवान का दया रहा है, किस्मत अच्छी रही है, मेरे 206 की 6 हड्डियां आज तक इंटैक्ट है। ये मान्यता अपने आप में सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है कि इट विल नेवर हैपन टू मी, यू नेवर नो। लाइफ के लिए कहते हैं लाइफ इज अनसर्टेन, सेफ्टी इज ऑल अबाउट मेकिंग द अनसर्टेन सर्टेन, हम इतना ज्यादा उस पर प्रयास करें। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं इफ पीपल आर गुड ओनली बिकॉज दे फियर पनिशमेंट, डर के आधार से मैं नियमों का पालन करूं एंड होप फॉर रिवॉर्ड, या फिर इसीलिए करूं ताकि आप मुझे सम्मानित करेंगे, then we are indeed a sorry lot of society। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, या तो फियर के आधार पर मैं ठीक काम करूंगा या फिर रिवॉर्ड के प्राप्ति के आधार से मैं। क्यों? क्योंकि हमने सेफ्टी कोई कल्चर नहीं बनाया है। मन को 2 मिनट के लिए शांत करें, मन का कंट्रोलिंग पावर को चेक करें, मन के स्टीयरिंग को देखें कि कहां जा रहा है मन। मैक्स गेयर कहते हैं सेफ्टी से संबंधित, बीइंग एबल टू डेमोंस्ट्रेट ड्यू डिलीजेंस इज नॉट अबाउट हैविंग अ थिंग। जो हम 3 E के बारे में बात कर रहे थे ना, एक अच्छा पॉलिसी, एक अच्छा सिस्टम और बहुत सारे प्रोसीजर्स एंड चेकलिस्ट, आपको ये नहीं करना, आपको ये करना, सड़क ऐसी होनी चाहिए, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, सरकार के नियम कानून ऐसा होना चाहिए, उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट हैविंग समथिंग, ड्यू डिलीजेंस इज अबाउट डूइंग दैट थिंग, करना पड़ेगा हम सबको। और यहीं पर हम थोड़े से पिछड़े रह जाते हैं, हमको लगता है दूसरे करें, दूसरे ठीक हो। आज हम थोड़ा सा पर्सनालिटी को समझने का प्रयास करेंगे। सेफ्टी डजंट सेव पीपल, सुरक्षा मनुष्य को सुरक्षित नहीं करता है, सुरक्षित मनुष्य मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर मैंने अंदर से कुछ धारण ही नहीं किया है और मैं जाकर किसी का टक्कर कर देता हूं, तो मेरी गलती से फिर दूसरों की जान जा सकती है। सो इट्स अबाउट एन एटीट्यूडनल चेंज, हमारे अंदर एक दृष्टिकोण में हम परिवर्तन करें सेफ्टी को लेकर के। द रियल एनिमी ऑफ सेफ्टी इज नॉट कंप्लायंस बट नॉन थिंकिंग, हम सोचते ही नहीं है, हमको जीवन का महत्व ही नहीं है। जीवन को शायद भारत में हम लोगों ने इतना लूजली डिफाइन कर दिया है, मृत्यु को भी। मेरे घर में आज तक किसी की भी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं हुई तो मतलब चलता है, वो तो सिर्फ वही लोग पीड़ा समझे जिनके घर में किसी की मृत्यु हुई है, बस वही सुरक्षा के नियमों का पालन करें। और मैंने यहां तक भी देखा है, अगर मैं जानता हूं मैं मुंबई में, हम न्यू बॉम्बे में, वहां पर एक पाम बीच रोड है और वो दुबई के उसके फॉर्म में बनाया है, वहां लगभग हर दिन एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और वहां लोग सिर्फ स्पीड में ही चलाने के लिए आते हैं। और मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहां पर हमारे एक स्टूडेंट की मृत्यु हुई, हम सब उनके घर गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इकट्ठा हुए, उसका अंतिम संस्कार भी कराया, अंतिम संस्कार कर अपने पिच्छू को साफ किया, बैक टू स्क्वायर वन में आ गए। एक भी स्टूडेंट जिसने शायद उसका अंतिम संस्कार वो अटेंड किया, उसने अपने जीवन में किसी की मृत्यु हो रही है करके अपने जीवन में सुरक्षा के नियमों को धारण करूंगा, जैसे मैं गाड़ी चलाता था उसमें फर्क लाऊंगा, बिना हेलमेट के पहनता चलाता था आज से पहनूंगा, वो कुछ आया ही नहीं है, वो सिर्फ शमशान घाट तक का ही वो दर्द वो पेन, उसके बाहर हम सब बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं, हम सोचते ही नहीं है इन सब बारे में, और सोचने के लिए हम सब यहां पर इकट्ठा हुए। फर्स्ट एड इज फॉर द इंजर्ड वन, किसी को तकलीफ हो जाए उसके बाद फर्स्ट एड, सेफ्टी इज अ फर्स्ट एड फॉर द अनइंजर्ड। आज मैं सुरक्षित हूं, कल की डेट में मेरे को इंजुरी ना हो उसके लिए हेलमेट पहनना, उसके लिए सीट बेल्ट पहनना, या फिर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना। प्रिपेयर एंड प्रिवेंट, डोंट रिपेयर एंड रिपेंट, वापस नहीं आ सकता है। लाइफ इज अनसर्टेन, एक क्षण की गलती, वो क्षण की वो जो सुख है, उसके पहले का जो सुख है उसको वापस नहीं ला सकता। जिंदगी भर का दुख, जिंदगी भर की पीड़ा उस मां को, उस घर परिवार वालों को होता है, क्यों? क्योंकि हमने प्रिपेयर और प्रिवेंट किया ही नहीं है। फॉर सेफ्टी इज नॉट अ गैजेट, वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई पॉलिसी नहीं है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, हमारी मन की स्थिति को डिटरमाइन करता है। हम थोड़ा सा समझने का आज प्रयास करेंगे, यू आर हाउ यू ड्राइव, मैं कैसे गाड़ी चलाता हूं उससे व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसके एटीट्यूड पता चल जाता है। ये एलेनोर एवर्ड वॉज अ वेरी ग्रेट सेफ्टी एक्सपर्ट थे, इन्होंने कहा था कि वस्तु परिस्थिति पॉलिसी बहुत ज्यादा टेक्निकल चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बस यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करना जरूरी है। ठीक है, ये था सेफ्टी की बातें। इसके लिए इनर पावर होना बहुत जरूरी है, आंतरिक शक्तियां होना बहुत जरूरी है। कहते हैं स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, शारीरिक शक्ति से हमको या शारीरिक बल से हमें शक्ति नहीं मिलता, इट कम्स फ्रॉम इनडोमिटेबल विल, वो है आंतरिक शक्तियों से। मुझे याद आता है 26 साल की ये महिला लखनऊ के बाहरी क्षेत्र में रहती है, साधारण से महिला है, इसके पास मसल पावर नहीं है, ये महिला के पास इंटेलेक्चुअल पावर, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, अंग्रेजी नहीं जानती है, बहुत क्वालिफाइड नहीं है, इस महिला के पास मनी पावर, पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में पैदा हुई है, ये महिला के पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, किसी बहुत बड़े नेता का जान पहचान नहीं है, इसको नेटवर्किंग पावर नहीं है, सोसाइटी के बहुत जो बड़े बड़े अच्छे पोजिशन में है उनके साथ इनका उठना बैठना नहीं है, कुछ पावर नहीं है। साधारण सी 26 साल की ये महिला नेशनल प्लेयर ऑफ फुटबॉल एंड वॉलीबॉल खेलती है, फुटबॉल और वॉलीबॉल में। एक बार अपने गांव से लखनऊ से वो नोएडा खेलने के लिए जो जनरल कंपार्टमेंट होता है रेलवेज का उसमें बैठकर, क्योंकि वो सेकेंड क्लास का भी टिकट अफोर्ड नहीं कर सकती है इसीलिए जनरल कंपार्टमेंट में बैठकर आ रही थी यहां पे खेलने के लिए। रात के 10:30-11 बजे जब ट्रेन रायबरेली, उत्तर प्रदेश में रायबरेली से जब ट्रेन पास हो रही होती है तो उस कंपार्टमेंट में चार लड़के घुसते हैं, और ये जो चारों लड़के होते हैं ये कोई बहुत अच्छी भावना से नहीं आते हैं, उनका भावना ही गलत होता, उनका भाव ही गलत था, और वो सब लोगों से पैसे छीनने, वैल्यूएबल्स छीनने लगते हैं। जब ये महिला के पास उस चार में से एक लड़का आकर उसका पतला सा उसके गले में गोल्डन चेन है उसको खींचने का प्रयास करता है, तो ये महिला बीइंग अ स्पोर्ट्स वुमन उतना जल्दी हार नहीं मानती है, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो टफ फाइट देने वाली बात होती है, ये उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो लड़का बोलता, अच्छा तो हमसे दुश्मनी बोलती है, तो जानती नहीं है हम कौन है, वो और जबरदस्ती करके उसके गले में हाथ डालने का प्रयास करता है, तो ये महिला उसका भी कॉलर पकड़ लेती है। तो वो जो लड़का होता है वो बाकी तीनों दोस्तों को बुलाता है, वो चार और ये महिला एक, भारी पड़ जाते हैं वो चारों के चारों, आई मीन शी इज जस्ट नॉट एबल टू हैंडल 4 वर्सेस 1। और वो चारों के चारों लड़के उसको घसीट करके उठा करके लेकर आते हैं, वो जो टॉयलेट एरिया होता है ना, जहां पर दो दरवाजे होते हैं एग्जिट के लिए, वहां पर उसको लेकर आते हैं और वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि अभी देख तेरे साथ हम क्या करने वाले हैं। और वो क्या करते हैं, दो लड़के उसका हाथ पीछे से पकड़ लेते हैं। आपको अगर ये लगता है कि मैं सिर्फ कहानी सुना रहा हूं तो जस्ट दो मिनट टाइम दीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा तब, क्योंकि मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। क्योंकि ये गांधी जी का जो ये स्टेटमेंट है ना, स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी और कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम इनडोमिटेबल विल। और दुख की बात यह है कि जो आंतरिक शक्तियों का पहचान है, उसका ज्ञान है, उसको बढ़ाने का जो तरीका है, वो हमने आज तक नहीं जाना है। वो कार्य ये ईश्वरी विश्वविद्यालय का मेन सब्जेक्ट ही ये है। इसके द्वारा हम जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। और यहां का विषय ही होता है, यहां की स्टडीज ही होती है, यहां का पूरा आधार ही इनडोमिटेबल विल को बढ़ाने वाला है, इनर पावर को। और वो दो लड़के उसका हाथ पीछे से पकड़ लेते हैं। एक लड़का बहुत रॉयली सार्कास्म, मतलब बहुत ज्यादा व्यंगात्मक तरीके से उसको बताने का प्रयास करता है, देख अब तेरे साथ हम क्या करते हैं। बहुत प्यार से वो जो पतला चेन होता है उसको खींचता है। चौथा लड़का उसके पेट में लात मारता है, इतना जोर से उसको मारता है, शी इज किक्ड ऑन हर स्टमक। पता है वो जो पीछे दो लड़के जो हाथ पकड़ के खड़े थे वो क्या करते हैं, जैसे ही उसको मारते हैं वो पीछे जो दो लड़के खड़े थे उसको चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। ये बताने का प्रयास करते हैं, देख तू हमसे दुश्मनी मोलती है तो हम क्या कर सकते हैं। एज लक वुड हैव हैड इट, आप बोल सकते हैं गिरीश भाई यहां तो दुर्भाग्य की बात है, यहां तो अब्यूज हो रहा है, यहां तो टॉर्चर हो रहा है, और आप लक की बात कर रहे हैं। एज लक वुड हैव हैड इट, जब उसको चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंका जाता है तो बाजू के ट्रैक से एक और ऑपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रही होती है, वो उससे जाके टकराती है। क्या दुर्दशा हुई होगी उस महिला की। आप खड़े हैं, ट्रेन आके टकराए, आपका अपना एक स्पीड है और ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आ जाए, द इंपैक्ट इज सो सीवियर, और वो चलती हुई ट्रेन से टकराती है और उसको पता ही नहीं चलता कि क्या ऐसा महापाप कर दिया मैंने जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो दोनों ट्रैक के बीच में पड़ी हुई है। ये घटना करीब करीब 10:30 बजे होता है, 11:30, 12:30, 1:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 9 घंटे के बाद गांव वाले देखते हैं कि दो ट्रैक अप एंड डाउन ट्रैक के बीच में ये महिला एक शव पड़ा हुआ है। जब जाकर देखते हैं तो पता चलता है ओ माई गॉड, मरी नहीं है, अभी भी सांस चल रही है, शी इज नॉट डेड, शी स्टिल ब्रीदिंग। और कहते हैं एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन रेलवेज, वो 9 घंटों में 49 स्पीडिंग ट्रेन्स आई और गई, और हर बार एक स्पीडिंग ट्रेन जब जाती थी तो ये महिला का जो बेहोश पड़ी थी उसको होश आता है, फिर चिल्लाती रही रात भर। उसके शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं था जिसमें उसको दर्द नहीं हो रहा था, चिल्लाती रही रात भर, लेकिन गांव दूर होने के कारण किसी को सुनाई नहीं दी। टू ऐड टू हर मिजरी, बदकिस्मती देखिए, ट्रैक में जो चूहे होते हैं ना, वो बहुत छोटे मोटे, एकदम स्मॉल साइज नहीं थे, एकदम एलिफेंट साइज, बिग साइज होते, मोटे मोटे चूहे रात भर इसके कटे हुए अंगों को कुतरते रहे। ये चिल्लाती रही लेकिन किसी के कानों पर इसकी आवाज नहीं गई। तुरंत लोगों ने उसको उठा करके वहां के सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया। और भारत की व्यवस्था देखिए कि उस वक्त उस हॉस्पिटल में एनेस्थेटिस्ट मौजूद नहीं था। उसने डॉक्टर्स को कहा, डॉक्टर्स operate on me, suture me without anesthesia, I've handled it for the last 9 hours, chinta mat kariye, main sahan kar lungi, aise hi operation kariye, or else I'll bleed to death, khoon ja ja kar meri mrityu ho jayegi, aise hi kariye। ye baat fail jati hai kyunki bharat mein nari suraksha, nari utthan, women protection, bahut sara commission, wo delhi mein jo case hua uske karan media opposition, ye san 2011 ki baat hai, bharat ki sarkar ko hilane ka prayas kar rahi, turant भारत की सरकार ने इस महिला को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली में शिफ्ट करा दिया गया ताकि हम इसकी सुरक्षा को ध्यान में दे सके। लेकिन ऑपोजिशन को जवाब चाहिए था, भारत के 123 करोड़ के लोगों को जवाब चाहिए था भारत की सरकार से कि नारी सुरक्षा के लिए आपके पास क्या इंतजाम है। ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीडिया को और 123 करोड़ भारतीय लोगों को थमाने के लिए ऑफिशियल प्रेस मीट करते हैं, और उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है पता है वो क्या कहता है, वो ये कहता है मीडिया ब्रीफिंग को कि ये जो महिला जो कहानी सुना रही है ना, ये मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस वक्त उस रेलवे कंपार्टमेंट में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कांस्टेबल मौजूद था, एक भी चश्मदीद गवाह नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो महिला टिकट लेस ट्रैवल कर रही थी, उसके पास टिकट नहीं था। जब टीसी ने टिकट पूछा, बचने के लिए वो खुदकुशी करने के लिए बाहर कूद गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, उस महिला के स्थान पर ये गिरीश भाई होता था ना, एक खून तो माफ था। मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को पॉइंट ब्लैंक रेंज में तो उड़ाई देता था, अरे आप मदद नहीं करो कम से कम, लेकिन झूठ तो नहीं बोलो, भारत के 123 करोड़ को गुमराह तो नहीं करो कि भारत सुरक्षित प्लेस है। यू शुड टेल द रियलिटी। और फिर भी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा पता है, बिकॉज शी इज अ विमेन और उसके साथ ये घटना घटी, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हम उसको 25,000 रुपए कॉम्पेंसेशन देते हैं, उसका एक पांव घुटने के नीचे कट चुका है, एक पांव की कीमत 25,000 रुपए। पता है विल पावर, इनडोमिटेबल स्पिरिट। पता है ये महिला ने क्या कहा, ये महिला ने कहा भिखारी नहीं हूं, नहीं चाहिए आपके 25,000 रुपए, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट योर 25,000 रुपीज। और दो साल के अंदर 21 मई सन 2013 आपको दिखाने वाला हूं, 21 मई सन 2013 के दिन ये महिला विश्व की प्रथम अपाहिज महिला बनी, प्रथम अपाहिज महिला, फर्स्ट विमेन एम्प्यूटी ऑन प्लैनेट अर्थ। आज तक इस संसार की कोई अमेरिकन महिला ने, कोई रशियन महिला ने, कोई ऑस्ट्रेलियन महिला ने, कोई जापानीज महिला ने, कोई यूरोपियन महिला ने, अपाहिज महिला ने आज तक नहीं किया, जो भारत की विश्व की प्रथम महिला अपाहिज महिला अरुणिमा सिन्हा, 26 साल की महिला, शी गोज ऑन टू बिकम द फर्स्ट वुमेन एम्प्यूटी ऑन प्लैनेट अर्थ टू टच 8,848 मीटर्स माउंट एवरेस्ट शिखर पे चढ़कर भारत का तिरंगा लगाया। कौन सा पावर, मसल पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, क्वालिफिकेशन पावर, मनी पावर, पॉलिटिकल पावर, नेटवर्किंग पावर। आज भारत की सरकार ने उसको सम्मानित किया, उसने 7 टॉप माउंटेन्स इन द वर्ल्ड कॉन्कर कर लिया, एक पांव नहीं है दोस्तों। हम शायद 206 हड्डियां रख करके भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने में दो बार सोच लेंगे। क्या स्पिरिट है इस महिला का, आप देखना चाहेंगे इस वीडियो को, मैं आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा साउंड बढ़ाएंगे।
एवरेस्ट पे जाना है। 21 मई 2013 को जब एवरेस्ट की चोटी पे हम थे, अपने देश का तिरंगा लगाया, अपना तिरंगा वहां लगाया, तो उस समय जो खुशी थी मेरे अंदर, वो खुशी को शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है।
दोस्तों, एक पांव नहीं है, सोचो क्या आंतरिक शक्ति होगी, क्या इनर पावर हो। और ऐसा भी नहीं कि बचपन में मेरी गलती से मेरा पांव कट गया, वो तो वो चार लोगों ने कितना टॉर्चर किया। ये महिला के पास ऑप्शंस हो सकता था फ्रेंड्स, भारत की सरकार को जिंदगी भर गाली दे सकती थी, पुरुष जाति के लिए मन में मरते दम तक नफरत की भावना रख सकती थी, ईश्वर अल्लाह परमात्मा खुदा दोस्त को गाली दे सकती थी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, लेकिन नहीं किया। लाइफ इज अ मैटर ऑफ चॉइस, सुरक्षित जीवन जीना है, सफल जीवन जीना है या असुरक्षित जीवन जीना, ये मेरा चॉइस है। मेरी जिंदगी की परिस्थितियों को लेकर मैं उसको सवारूं या बिगाड़ूं, टू मेक इट बेटर और बिटर इज माई चॉइस, वो मेरी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है, वो मेरा विलिंगनेस है, वो मेरी दृढ़ता पर आधारित है। सुरक्षित जीवन या असुरक्षित जीवन इज माय चॉइस, वो मेरे छोटे छोटे कर्मों से डिसाइड हो जाता है कि मैं सुरक्षित, सफल, अच्छा, मजे वाला, आनंदित, शक्तिशाली जीवन जीऊं या नहीं जीऊं। प्लीज वॉच।
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नॉट इजीली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, हर अचीवमेंट इज अ शो ऑफ इंडोमिटेबल स्पिरिट एंड टेनेसिटी। The entire world took notice as she hoisted the Indian tricolor on the top of the world, confronting all odds of her own world.
मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ।
दोस्तों, इतना आसान नहीं है माउंट एवरेस्ट चढ़ना, टेम्परेचर -50 डिग्री से कम होता है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है, आपको अपना ऑक्सीजन सिलेंडर, आपका पूरा सामान लेकर जाना पड़ता, आपका एक पांव नहीं है। इनक्लीमेंट वेदर, मिनट मिनट पे वहां मौसम चेंज हो जाता है, वहां पे द ग्लेयर ऑफ द सन, जो स्नो पर सूर्य की किरण पड़ती है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है उससे आंखें चौंधिया जाएगी, ब्लाइंड हो जाएगा, और आपके पास एक पांव नहीं है। और फिर माउंट एवरेस्ट चढ़ना इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स, फिर भी उसने कर दिखाया। कैसे कर दिखाया? वो आंतरिक शक्ति।
26-year-old अरुणिमा सिन्हा क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट।
पहली अपाहिज महिला।
उस समय बस ये मन कर रहा था कि इतनी जोर से चिल्लाऊं, सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं, उन लोगों को बता दूं जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था कि तुम तो विकलांग हो गई हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो।
Arunima lost her left leg just 2 years ago when she was thrown out of a moving train.
जब उन्होंने गले में मेरे हाथ डाला ऐसे करके छीनने की कोशिश की, तो मैंने भी उसका कॉलर पे, तो दो उसके दो साथी किनारे किनारे थे और एक फ्रंट पे जो था उसने जोर से पैर से मुझे मारा और दोनों ने हाथ को पकड़ा और ऐसे करके बाहर फेंक दिया। चलती ट्रेन से बाहर हम बाहर की तरफ गिर गए और उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ गई। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे लाइट हमेशा आती जाती रहती है, तो ऐसे आया दिमाग में कि घर में जब लाइट चली जाएगी और सब लोग दौड़ दौड़ के छत पे चलेंगे, हम आराम से कैसे आ पाएंगे या फिर हम वहीं पड़े रहेंगे। सोचे कि क्या होगा,
सीढ़ी चढ़ने की भी हिम्मत नहीं,
खेलने की तो छोड़ ही दीजिए, कभी हम फील्ड तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, ये लगा था।
लेकिन
दिस ब्रिटिश स्पोर्ट्स वुमन वाजंट गोइंग टू लेट द अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट अनडू हर विनिंग स्पिरिट। While still in the hospital, this former national level volleyball and football player decided to return to the sports ground and train in one of the toughest sports.
Hospital mein rehkar aaj bhi wo ticket dikhati hai. Ye ticket ko kaha tha na sarkar ne ki main ticket nahi travel kar rahi thi. Ye dekho ye mere paas wo ticket hai. Aur ye mahila kehti hai hospital mein rehte hue isne Bachendri Pal ko phone kiya jo pahli pratham महिला, भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट, और कहा मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। बचेंद्री पाल ने कहा बेटा ये अपने आप में सोचना बिना एक पांव के माउंट एवरेस्ट चढ़ना ये ही अपने आप में बहुत महानता है, तुम रियल में कर नहीं पाओगी लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, तुमने सोचा ना ये भी मैं बहुत मान्यता देती हूं लेकिन तुम कर नहीं पाओगी। लेकिन उसने करके दिखाया। मैं अरुणिमा सिन्हा का एक कोट आपको बताना चाहता हूं, मैं खुद नहीं बोलूंगा, आप उनके शब्दों में सुनिए वो क्या कहती है।
विकलांगता हमेशा दिमाग से होता है,
विकलांगता इधर से होता है, हाथ पांव से नहीं होता है, सेफ्टी इधर से होती है, असुरक्षा इधर से होता है, रिस्क इधर से होता है, इधर से नहीं होता है। 80% सेफ्टी इज अ बिहेवियरल प्रॉब्लम, हमारी मान्यता, हमारा बिलीफ, हमारा इंटरेस्ट, हमारा वैल्यूज पे डिपेंड करता है। इस इंडोमिटेबल स्पिरिट को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है और उसको हम थोड़ा सा जरूर डिफाइन करेंगे। स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्तियां, ठीक है। नेक्स्ट इज जिसको हम कहते हैं ग्रेट सोल्स हैव विल, फीबल वंस हैव ओनली विशेस। जो सशक्त आत्मा होती है, शक्तिशाली आत्मा होती है, उसमें इच्छा शक्ति होती है, जो चाहूं जैसे चाहूं जब चाहूं मैं कर सकता हूं। और जो कमजोर होती हैं उनमें सिर्फ विशेज ही होता है, ऐसा करूं ऐसा करूं, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, उनके लैंग्वेज में भी फर्क होता है। विल पावर इज द की टू सक्सेस, सक्सेसफुल पीपल स्ट्राइव नो मैटर व्हाट दे फील बाय अप्लाइंग देयर विल टू ओवरकम एपथी, फियर एंड डाउट। वो किसी भी प्रकार का आंतरिक कमजोरी को अपने आत्मा की शक्ति से उस पर जीत पा लेते हैं। मेन कैन डू थिंग्स इफ दे विल, विल इज कैरेक्टर इन एक्शन, इट इज बाय विल अलोन दैट आई सेट माय माइंड इन मोशन, द विल ऑफ मैन इज हिज हैप्पीनेस। 52 years का ये व्यक्ति करीमुल हक वेस्ट बंगाल के अंदरूनी एरिया में जलपाईगुड़ी के एक छोटे से गांव में 1995 में उसकी बूढ़ी माताजी का जब तबीयत खराब हुआ रात को, और क्योंकि हॉस्पिटल काफी दूर था, 40 किलोमीटर दूर था, वो एक घर से दूसरे घर, यहां वहां, एक गाड़ी का प्रबंध, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल जाए ताकि अपनी बूढ़ी माताजी को, बीमार माताजी को हॉस्पिटल तक पहुंचा दे, लेकिन उसको मिला नहीं। और उस प्रयास में रात के 2:45 में उसकी मां का देहांत हो गया। उस वक्त वहां बैठकर उसने सोचा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से मेरी मां का मृत्यु हुई, ऐसे शायद गांव में इतने सारे लोग होंगे जो सही समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से घरेलू इलाज ही करते रहते लोग, क्योंकि अब जा ही नहीं सकते, ऐसा कोई वो ही नहीं है, मोड ही नहीं है। और उसने वहां डिसाइड किया कि मैं मदद करूंगा। उसने एक बाइक लोन में लिया और उसके आगे और पीछे लिख दिया एम्बुलेंस, डे एंड नाइट फ्री सर्विस, लोन पे ली हुई गाड़ी, और उसने वो कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बाइक पे भी कोई एम्बुलेंस होती है, इससे किसी की जीवन की रक्षा होगा, ये व्यक्ति थोड़ा सनकी हो गया है। लेकिन धीरे 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 जब लोगों से वो, उसका फोन कभी भी 24 घंटे बज सकता है और वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। आज तक उसने लगभग 3,000 से 3,500 लोगों की जान बचाई, खुद इनिशिएट लेके, विल, अपनी इच्छा शक्ति से। 68th रिपब्लिक डे में विराट कोहली, दीपा कर्माकर और मीनाक्षी अम्मा, जो केरला की कलरीपयट्ट करके एक आर्ट फॉर्म होता है, जैसे कुंफू कराटे होता है वैसे, शी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सपोनेंट इन कलरीपयट्ट, इन तीनों के साथ और भी बहुत सारे लोग थे, उन तीनों के लाइन में करीमुल हक को पद्मश्री से भारत की सरकार ने सम्मानित किया। अपनी इच्छा शक्ति से, सिस्टम कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, अगर मैंने अपने अंदर यह धारणा कर ली कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, आज के बाद सीट बेल्ट के बिना गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, सुरक्षा नियमों को दूसरे करे या ना करे ये मेरी इच्छा है, आप करते हैं नहीं करते वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि आई वैल्यू लाइफ, वो मेरी इच्छा, आई वैल्यू माई फैमिली मेंबर्स लाइफ, मेरे घर वालों के लिए मैं करूंगा, दुनिया वालों के लिए करना नहीं करना वो बात की बात है। और मजे की बात यह है, इसकी एक पत्नी, 4 बच्चे, 2 बेटा 2 बेटी, दोनों बेटियों की शादी हो गई है, एक बेटा मोबाइल टेक्नीशियन है और एक बेटा और इसकी पत्नी इस कार्य में इनको मदद करती है। आप सोच सकते हैं, ये चाय बागान में काम करने वाला एक सिंपल सा वर्कर, महीने का पगार 4,000 रुपया, वो 4,000 में भी 1,000 रुपए अलग सा निकाल के रखता है पेट्रोल के लिए। सोचने वाली बात है दोस्तों, हमारा सैलरी तो बहुत ज्यादा होगा उसकी, फिर भी हम किसी के जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आ जाएं, उसके लिए हम क्या करते हैं। देखना चाहेंगे करीमुल हक को, प्लीज देखे, ओ सॉरी, ये लाइट्स बंद करेंगे, गॉड ब्रदर, आई वॉन्ट टू प्ले दैट इनक्रेडिबल इंडियंस, या किसी से भी कर दीजिए जी, साउंड साउंड बढ़ाएंगे, साउंड एक बार बीएलसी में ट्राई करेंगे, एक्सीडेंट हो रहा है, आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे हो, वेरी गुड। एक बार मेरी सभा में एक भाई का मोबाइल बजा, ठीक है, तो मैंने सबको कहा, आप सबसे नम्र निवेदन है कि अपना मोबाइल फोन को साइलेंट मोड या स्विच्ड ऑफ मोड में नहीं रखें। प्लीज सब लोग अपना मोबाइल फोन एक्टिव मोड में रखें या स्विच्ड ऑन मोड में रखें। तो सब लोग मुझे ऐसे घूर के देख रहे थे जैसे कि मैं कोई दूसरे ग्रह से आया हूं, ठीक है। क्योंकि जनरली लोग कहते हैं कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही कहते हैं प्लीज कीप योर मोबाइल फोन ऑन अ स्विच्ड ऑफ मोड और अ साइलेंट मोड। मैंने जब उल्टा कहा तो सब लोग आश्चर्यचकित, कोई लोग तो अपना चेहरे को भी सपना देख रहे हैं या सत्य हो रहा है ऐसा सोच रहे थे। तो मैंने कहा अगर आपका मोबाइल फोन बजेगा तो आप मेरे सबसे अच्छे साथी कहलाएंगे। तो सबने कहा क्यों? मैंने कहा आपके मोबाइल फोन बजने से कम आजू बाजू वाला जगत हो जाएगा, जगत शांत रहो। क्योंकि मेरा इतना सुंदर भाषण सुन के तो लोग मुंह खोल कर सोते हैं, ठीक है ना, आंखें खोलकर भी कई लोग सो जाते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने उनको कहा अगर मैं एक निवेदन करना चाहूं तो करूं? उन्होंने कहा बताइए गिरीश भाई, आपने मोबाइल की तो छुट्टी दे दी है, हम तो उसको यू कैन स्टिल ट्राई फ्रॉम दिस इफ इट इज कैन बी प्लेड फ्रॉम द सोर्स। तो उन्होंने कहा बोलिए आप जो बोलेंगे करने को तैयार है, मोबाइल के लिए तो छुट्टी मिल गई ना। हमने कहा, मैंने कहा प्लीज डोंट कीप योर मोबाइल फोन ऑन अ साइलेंट मोड, मोबाइल को साइलेंट मोड में मत रखिए अगले एक घंटे के लिए, प्लीज कीप योर माइंड ऑन अ साइलेंट मोड। तो एक भाई साहब ने कहा सर पहला वाला करना चलेगा क्या? क्योंकि दूसरा वाला बहुत डिफिकल्ट है, पहला वाला तो बस मोबाइल फोन निकाल लो साइलेंट बटन को दबाओ परमानेंटली साइलेंट, चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन इसको साइलेंट करना का टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। इसी बुद्धि ने उस मोबाइल में साइलेंट बटन बना दिया है, लेकिन यही बुद्धि खुद ही अपने मन को साइलेंट करने में बहुत डिफिकल्ट है। कुछ गड़बड़ है? हाँ जी, वीडियो से साउंड नहीं आ रहा, अच्छा तो दिखाई देते हैं, वो उसमें दिखा दीजिए वीएलसी सॉरी मीडिया प्लेयर में। मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल ये वीडियो है, हाँ लाइट्स बंद कर दीजिए ब्रदर। हाँ ये रात के 2 बजे 2:30 बजे इसको फोन आता है, लोगों ने इसका नाम एम्बुलेंस दादा रखा है। 52 इयर्स, जलपाईगुड़ी में करीमुल हक। ये बजाज जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उन्होंने बनाया है। वो कहता है मेरी मां को जब ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं मिला तो मैंने बैठ के सोचा, मुझे बहुत दुख हुआ, कितने गरीब लोग चाहे बूढ़ा हो चाहे छोटा हो, मैं सबको हॉस्पिटल तक टाइम पर लेकर जा सकता हूं। और मैं सारा दिन सोचता रहता था कैसे करूं कैसे करूं। एक दिन टी गार्डन में एक वर्कर गिर गया तो इसने अपना बाइक लिया, अपने कंधे से उसको बांधा, कपड़ा रखता है, और उसको लेकर के गया। और मेरा जो बाइक है मेरे लिए एम्बुलेंस बन गया। आज हमारे लिए बाइक किसी के लिए मृत्यु का कारण बन जाता है, और इसने करीब 3,500 लोगों की जान बचाई। वो कहता है, उसको लोग कहते हैं कि आप कार क्यों नहीं ले लेते, बोला नहीं कार यहां से सब जा नहीं सकती है किनारे सड़कों से, इसीलिए मैं बाइक लेकर जाता हूं। और वो कहता है एक बार एक बच्चे को, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसको लेकर जा रहा था, पापा पीछे बैठे थे। पहले हम जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लेकर गए, डॉक्टर ने कहा यहां इलाज नहीं हो सकता है, तो उसको हॉस्पिटल 50 किलोमीटर दूर। और जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि बच्चे की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता को पता ही नहीं था कि उसके गोदी में बैठा हुआ जो बच्चा है वो जीवित नहीं है। और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि अभी इसके तो मृत्यु हो गई है, लेकिन इसके पास सिर्फ 90 रुपए था जेब में। वो 90 रुपए को वो डेड बॉडी को वापस गांव तक नहीं लेके जा सकता था, और उसके पिताजी के पास भी पैसे नहीं। हॉस्पिटल में ही अंतिम संस्कार कराया, गांव वाले को अंतिम दर्शन तक प्राप्त नहीं हुए उस बच्चे का। फिर उसने क्या किया, अपने ही बाइक के पीछे 2 ऑटो रिक्शा का जो व्हील्स होता है और एक मेकशिफ्ट कॉफिन बनाया, और जब भी किसी डेड बॉडी को आके लेकर जाना है उसके लिए, और बजाज वालों ने देखो उसके लिए क्या करके दिया, उसको एक सरप्राइज गिफ्ट दिया। ये म्यूजिक होता था ना तो बहुत टचिंग वो है, वीडियो है। क्या बात, वो कहता है मेरी मां वापस आ गई, वो बाइक को मां कहता है, क्या विल पावर होगा। सिर्फ 4,000 रुपए को लेकर अगर कोई व्यक्ति 3,500 जीवन को बचा सकता है तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हम कितने पढ़े लिखे, हमारे पास क्या क्या शक्तियां हैं। मतलब बिठा करके भी, लिटा करके भी लेकर जा सकते हैं पेशेंट्स को। आई विल कंटिन्यू टू सेव लाइव्स टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। खुशी होती है ना ये सब सुन के, देख करके। चलिए, मेन कैन डू थिंग्स इफ दे विल। विल इज कैरेक्टर इन एक्शन। इट इज बाय विल अलोन दैट आई सेट माय माइंड इन मोशन। मैं और 10 मिनट लूंगा आपका। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहां पर और साइकोलॉजिस्ट ने मिल करके 7 ड्राइविंग पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई किया। आप भी अपने साथ रिलेट करना है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका ड्राइविंग पर्सनालिटी क्या है, देखना, ठीक है ना। और उन्होंने कहा अंडरस्टैंडिंग व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर वी एग्जिबिट और कौन सी परिस्थिति में हमारा कौन सा नेचर बाहर आता है, उससे हमें पता चल जाएगा कि हम कितना कंट्रोल में रहते हैं या नहीं। पहला ड्राइविंग पर्सनालिटी इज टीचर। सड़क में भी टीचर हो जाते हैं कई लोग। बता सकते हैं टीचर क्या हो सकता है? ये देखिए फोटो में दिख रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे बात होती है तो ये मैडम टीचर नीचे उतर करके दूसरे को बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती है, ठीक है। टीचर का मतलब द टीचर नीड्स टू मेक श्योर अदर ड्राइवर्स नो व्हाट दे हैव डन रॉन्ग। ये टीचर जो है ना बहुत अच्छी तरह नियम कानून का पालन करेगा, खुद हर तरीके से पालन करेगा, लेकिन हमेशा घर 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 ये ठीक नहीं चलाता, ये कैसे गाड़ी मोड़ रहा है, ये रेड लाइट पे चला गया, हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करता रहेगा। और सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं करता रहेगा, नीचे उतर कर रोक करके उसको ज्ञान सुना करके तुम्हारी ये गलती है समझा करके, और ये चाहेगा भी कि आप मुझे अप्रिशिएट करो कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं। इसको कहते हैं टीचर। आप में से कौन कौन लोग हैं टीचर प्रवृत्ति, जरा हाथ ऊपर उठाएं। सड़क में गाड़ी चलाते वक्त टीचर, स्कूल कॉलेज के टीचर नहीं, गाड़ी चलाते वक्त टीचर। ये जो बैक सीट टीचर बैक सीट ड्राइवर ना बहुत ही खतरनाक होता है। पीछे बैठकर तू ऐसा क्यों चला रहा है, वहां से क्यों नहीं चला रहा है, रेड लाइट नहीं दिख रहा है क्या तेरे को, ये समझता नहीं है तू, इतना कर रहा है। पीछे बैठकर बाजू में बैठकर गड़गड़ गड़गड़ करते रहते। कई बार तो फिर बोलते भैया आप ही चला लो गाड़ी। फिर उनको लगता है हर दूसरा व्यक्ति जो है वो गलत है। दूसरा है कॉम्पिटिटर। पहला का नाम क्या है? टीचर। देखना हाँ आप लोग गाड़ी चलाते वक्त टीचर बनते हैं या नहीं बनते। दूसरा है जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटर। ये कॉम्पिटिटर जो होता है ना बहुत ही वंडरफुल होता है। उसके लिए वो जो सड़क होता है ना वो स्टेज है, ठीक है। उसको कहीं भी कुछ गलती नजर आएगी ना वो दूसरों को ठीक नहीं करेगा, लेकिन अपने गाड़ी के चलाने के स्टाइल से वो दूसरों को बता देगा, भले आप देखो या नहीं देखो। अगर किसी ने कट मारा तब तो मैं कॉम्पिटिटर हूं तेरा। आपने अगर मुझे थोड़ा हॉर्न बजा करके मुझे पीछे छोड़ दिया तो आई विल 100% ओवरटेक। भले मुझे राइट मुड़ना था वो नहीं मुड़ूंगा, लेकिन तेरे को पहले पीछे दिखा करके फिर लंबा टर्न लेकर के घर आ जाऊंगा। वो है कॉम्पिटिटर। ये अंदर ही बैठ के एनरेज रहेगा हमेशा, इसको कॉम्पिटिशन की भावना होगी। द कॉम्पिटिटर नीड्स टू गेट अहेड ऑफ ऑल द अदर ड्राइवर्स एंड इज एनॉयड व्हेन समवन गेट्स इन द वे ऑफ दैट। अगर किसी ने मेरे राह के बीच में आ गया तो मैं आपको दिखा दूंगा। ही शी माइट एक्सेलरेट व्हेन समवन ट्राइज टू ओवरटेक देम एंड क्लोज अ गैप टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम गेटिंग इन फ्रंट ऑफ देम। मतलब मैं अपने ड्राइविंग स्किल से आपको नीचा दिखाने का प्रयास करूंगा। हम लोग हैं ऐसे कॉम्पिटिटर? क्या बात है, आप लोग नहीं है, बहुत अच्छी बात है, टू गुड, ठीक है। तीसरा है अवॉइडर। यहां तो कई लोग हो सकते हैं अवॉइडर। ये तीसरा पर्सनैलिटी है ड्राइविंग का, अवॉइडर। देख रहे हैं अवॉइडर, मैं आपको बताता हूं अवॉइडर क्या करता है। अवॉइडर सब चीजों को अवॉइड करेगा। उसके लिए हर दूसरा ड्राइवर बहुत घटिया ड्राइवर है। किसी को कुछ आता नहीं है, बस मुझे ही सब आता है। वो दूर दूर से जाएगा, वो बहुत धीरे गाड़ी चलाएगा, दूसरे गाड़ी के 4 मीटर दूर से निकालकर ओवरटेक करेगा। उसके कारण पीछे वाले लोग को इनकन्वीनियंस हो रहा है, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने मस्त चाल से चलाएगा। उसको यहां पे बैठ चुका है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ाने का, पेट्रोल की ज्यादा खपत होती है, वो चलाते रहेगा, रोड के बीच में ही चलाएगा। वो यहां से भी नहीं निकालेगा, यहां से भी नहीं निकालेगा, क्योंकि वो किसी के नजदीक भी नहीं, अवॉइड करेगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तुमको गाड़ी चलाना ही नहीं आता, सिर्फ मेरे को ही गाड़ी चलाने आता है, और इसके कारण पीछे का पूरा ट्रैफिक रुका हुआ, उससे उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने मस्त चलाता रहेगा। इट इज कॉल्ड एज अवॉइडर। ये देखो, वो अपने मस्त, द अवॉइडर ट्रीट्स मिसबिहेविंग अदर ड्राइवर्स इम्पर्सनली, डिसमिसेस देम एज हजार्ड। सब लोग डेंजरसली हजार्डस ड्राइवर्स है, उसने सर्टिफिकेट ही दे दिया सबको, सिर्फ मैं ही हूं जिसको सब कुछ आता है, ठीक है। वैसे एक और पर्सनैलिटी है जिसको हम कहते हैं नो इट ऑल। चौथा है पनिशर। ओहो, आप में से कौन कौन पनिशर है? अभी पता नहीं है भैया पनिशर क्या है, बताइए फिर हम हाथ ऊपर उठाएंगे, ठीक है ना। बता देता हूं, ये है पनिशर। अगर उसको कहीं गलती दिख गया, वो आपको रोक करके खुद भी गाड़ी से उतरेगा, आपको भी गाड़ी से बाहर निकालेगा, और दो चार सुनाएगा जरूर। The punisher wants to punish other drivers for any perceived misbehavior, might end up getting out of his or her car or approaching other drivers directly. आपको जरूर दिखाएगा वो कि भैया आप ठीक नहीं हो, आप गलत हो। आपको मैं ज्ञान व्यान नहीं सुनाऊंगा कि तुमको बेटर ड्राइवर बनना चाहिए, तुमने यह गलती की। वो अपने आप को दिखाएगा कि मैं ही अच्छा हूं। द नो इट ऑल ड्राइवर, इसको बहुत ईगोइस्टिक ड्राइवर कहते हैं। ये नो इट ऑल ड्राइवर ना अपने गाड़ी के अंदर बैठ के ही सब सुनाता रहेगा, वो गाड़ी से बाहर भी नहीं निकलेगा, और मैं ही राइट हूं और आप गलत हैं। ये है नो इट ऑल ड्राइवर। इसमें महिलाओं की संख्या थोड़ी, भाई लोग ऐसे मत हंसिए, कभी कभी हम ये भी रोल प्ले कर जाते। द नो इट ऑल थिंग्स ही और शी इज सराउंडेड बाय इनकॉम्पिटेंट फूल्स एंड कंटेंस देमसेल्व विद शाउटिंग एट अदर ड्राइवर्स। वो ये बताने का प्रयास करेगा कि मुझे सब कुछ आता है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, गाड़ी चलाने आता है, गाड़ी से उतरेगा भी नहीं, वो सुधार भी नहीं करेगा कि भैया आपको इतना बेटा धीरे गाड़ी चलाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा तो बहुत नुकसान हुआ। टीचर तो फिर भी दूसरे का बेनिफिट के लिए कुछ नहीं, वो गाड़ी के अंदर बैठ गई। मुझे याद आता है मैं मुंबई एयरपोर्ट में उतरा, मुंबई एयरपोर्ट से हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वापस हम बोरीवली जा रहे थे, तो हमारी गाड़ी एयरपोर्ट में बहुत भीड़ होती है, बाजू से एक और गाड़ी का वो जो रेयर व्यू मिरर है ना, वो और हमारी गाड़ी का रेयर व्यू मिरर टकरा गया। अब टकरा के हम टैक्सी में बैठे थे, हम भी जा रहे वो भी जा रहे, वो अंदर से इतनी क्या बोल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने वो ड्राइवर को बोला, भैया तेरे को समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा है? बोला नहीं सर, उसको आनंद की अनुभूति हो रही होगी गाली दे करके। अरे हमको सुनाई तक नहीं दे रहा वो क्या बोल रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है कि गाली दे रहा है? मैंने कहा आपको समझ में आया क्या? बोला नहीं सर, उसको आनंद आ रहा होगा क्योंकि वो भड़ास निकाल रहा है, आपको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हम लोग रोड में नहीं करते हैं, कभी कभी जीवन में भी कर जाते हैं, ठीक है। सिक्स्थ इज फिलोसोफर। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टाइप ऑफ ड्राइवर इन ऑल द सेवन पर्सनैलिटीज। फिलोसोफर क्या होता है, उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ही इज नॉट अफेक्टेड बाय, ही विल नॉट रिएक्ट। उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, वो एक्सेप्ट करता है, वो बहुत मैच्योर होता है, वो बहुत मस्त रहेगा। टक्कर हो गई देखो कैसे बैठा है। द फिलोसोफर एक्सेप्ट मिसबिहेवियर्स इजीली, गलतियों को स्वीकार करेगा, दूसरों की गलतियों को भी स्वीकार करेगा, एंड ट्राइज टू रैशनली एक्सप्लेन इट। महिला का एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का, हम तो समझ में आता शादीशुदा है, ठीक है ना, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। या भाई का एक्सीडेंट हुआ है तो झगड़ा करके आया होगा, वो ही खुद रैशनली सोच लेगा अब इससे झगड़ करके क्या फायदा, आगे का सुधार करो। मैनेजेस टू कंट्रोल हिज और हर फीलिंग। अभी तक जितना भी देखा दूसरों पर चढ़ गए, दूसरों को पनिश कर दिया, दूसरों के साथ कॉम्पिटिशन, दूसरों को सुधार दिया, लेकिन जो फिलोसोफर होता है वो चीजों को समझता है। हाँ भारत में थोड़ा डेंसिटी ज्यादा है, पॉट होल ज्यादा है, सरकार क्या क्या करे, हमारा भी फर्ज बनता है। वो प्रॉब्लम को कंपाउंड नहीं करेगा, उसको फिर एलिमिनेट करने का प्रयास करेगा। आप लोग में से कौन कौन फिलोसोफर्स हैं हाथ ऊपर उठाइए। आप लोग ना पनिशर है, ना टीचर है, ना फिलोसोफर है, तो है क्या चीज। हाजी, वी आर गुड ड्राइवर्स, वंडरफुल सर, वी आर लिसनर्स, ठीक है। आप ये सेवेंथ कैटेगरी में आ गए, ठीक है ना, लिसनर हैं तो फिर सेवेंथ कैटेगरी है। एसकेपी क्या होता है पता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसके साथ क्या हो रहा है, उसने दो, एक यहां लगा के रखा, एक यहां लगा के रखा, कौन जा रहा है, कौन स्पीड से जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने में मस्त है। भले कान में नहीं भी होगा ना, वो यहां चालू है, अरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा करना है, इसको कहते हैं एस्केपी। वो तभी रिएक्ट करेगा जब उसके साथ कुछ घटना घटेगी, अदरवाइज ही इज ऑब्लिवियस टू द फैक्ट, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता किसके साथ एक्सीडेंट हो रहा है, किसका नहीं हो रहा, वो अपने में मस्त है। ये एस्केपी, द एस्केपी लिसन्स टू म्यूजिक और टॉक्स ऑन द फोन टू इंसुलेट हिम और हरसेल्फ। एस्केपीज डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ विद सिलेक्टेड सोशल रिलेशनशिप सो दैट दे डू नॉट हैव टू रिलेट टू व्हाट इज हैपनिंग एट द आउटसाइड। उनको उससे कोई मतलब नहीं है। जब हमारे साथ कुछ घटना घटेगी तब जाकर के मैं रिएक्ट करूंगा। ये है सेवन ड्राइविंग पर्सनैलिटीज। इसके लिए हमें अष्ट शक्तियों की आवश्यकता है। अब ये शक्तियां कैसे आ सकती हैं, जो आपको यहां राज्यों का अभ्यास करा जाएगा। यू कैन थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ सुपर हीरो। आप सब सुपर हीरो हीरोइन बैठे यहां पर, ठीक है, डाउट नहीं करिएगा। हु हैज बीन गिवन 8 पावर्स। हमको ईश्वर परमात्मा ने बाय डिफॉल्ट अष्ट शक्तियां दी है। एज यू लर्न हाउ टू यूज योर पावर्स दे बिकम स्ट्रॉन्गर इन यू। जैसे जैसे आप इन अष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे ही आपके अंदर शक्तियां बढ़ती जाएंगी, ठीक है। जस्ट लाइक एनी सुपर हीरो यू कैन लर्न the skill of applying the right power at the right time in the right situation। ये अष्ट शक्तियों को बहुत जल्दी से समझते हैं। नंबर वन, द पावर टू फेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सामना करने की शक्ति। दुर्गा को 8 हाथ दिखाते हैं ना। जीवन यात्रा में या स्थूल यात्रा में भी हमारे सामने अगर कोई परिस्थिति आती है, हम इन अष्ट शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। द पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। ये पावर टू फेस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू कन्फ्रंट एंड रिजॉल्व, सामना करके समस्या का समाधान, चाहे समस्या बाह्य जगत से हो, चाहे आंतरिक ऑब्स्टिकल हो, टेस्ट हो, चैलेंजेस हो, उसको हम सामना करके सॉल्व कर सकते हैं। ये किन लोगों को जरूरत है? जो एस्केपी हैं, उनको सामना करने की शक्ति की धारणा करना जरूरी है। जो अवॉइडर हैं, जो अवॉइड करते हैं, दूसरे के नजदीक नहीं जाते हैं, अपने आप को समझते हैं आई नो एवरीथिंग वाला है, एंड नो इट ऑल, जिनको ईगो होता है, आपको कुछ नहीं आता है, ऐसे लोगों को सामना करने की शक्ति की आवश्यकता होती है। दूसरा है जिसको हम कहते हैं विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कछुआ होता है ना, वो समय आने पर अपना अंग को अंदर कर लेता है ना, वैसे ही विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति का अर्थ यह है आप स्टेप बैक करो, थोड़ा डिसएंगेज करो, जबरदस्ती इन्वॉल्व नहीं हो। ये उन लोगों को जरूरत होता है जो पनिशर होते हैं। अगर किसी ने कट मार के गया तो मैं उसको दिखा दूंगा, उसको थोड़ा सा विड्रॉ करने की जरूरत है। जो टीचर हैं, टीचर जबरदस्ती जाकर दूसरे को ज्ञान देगा, अगर जरूरत है या नहीं है, वहां से डिसएंगेज होना जरूरी है। और जो कॉम्पिटिटर हैं, जिनका ये प्रवृत्ति है ड्राइविंग स्किल, उनको ये शक्ति की आवश्यकता है। तीसरा है जिसको हम कहते हैं पावर टू अकोमोडेट, समाने की शक्ति, सब लोगों को साथ लेकर के चलने की शक्ति। राजयोग से ये शक्तियां स्वतः आ जाएगी। इट इज द एबिलिटी टू एक्सपैंड एंड एक्सेप्ट द प्रेजेंस, आइडियाज एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों का आइडिया, दूसरे लोगों की मान्यताएं, दूसरे लोगों का वहां पर प्रेजेंस, उन सबको वो अकोमोडेट कर जाएगा। ये किसको किसको जरूरत है? टीचर को जरूरत है, पनिशर को जरूरत है, अवॉइडर को जरूरत है, एस्केपी को जरूरत है, कॉम्पिटिटर, हर एक को दूसरों को अकोमोडेट करने की आवश्यकता है। द पावर टू पैक अप, ठीक है ना, अगर हमको दिल्ली जाना है तो हम शायद 2 दिन का ही सामान लेकर के जाएंगे, पूरा घर का सामान उठा के नहीं लेके जाएंगे, हमें पता है कि हमको क्या क्या सामान चाहिए। पावर टू पैक अप इज द एबिलिटी टू ब्रिंग थिंग्स टू एन एंड एंड टू स्टॉप वेस्टफुल थिंकिंग। कितना सीमित जरूरत की चीजें हैं उतना ही मैं वर्तमान समय लेकर जाऊं। पनिशर, क्या जरूरत है जाकर दूसरे को पनिश करने की? क्या जरूरत है दूसरे को अननेसेसरली ज्ञान देने का? क्या जरूरत है ईगो दिखा करके गाड़ी के अंदर बैठ के ही सुनाने का? बस सुन रहा है नहीं सुन रहा है उसको कोई मतलब नहीं। क्या जरूरत है कंपटीशन दिखाने का? हम संभाल लें अपने आप को, हम देख लें कि मैंने पैकअप किया है या नहीं किया है। पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू डिस्क्रिमिनेट मतलब परखने की शक्ति, क्या सही है क्या गलत है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। उसके लिए हम कहते हैं इट इज द एबिलिटी टू डिसर्न द सटल एंड सेपरेट व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स, क्या राइट और क्या रॉन्ग है। इसमें भी पनिशर को, टीचर को, अवॉइडर को, नो इट ऑल को, कॉम्पिटिटर को, अगर 2 कॉम्पिटिटर आपस में मिल जाएं तो महायुद्ध छिड़ जाएगा। अगर 2 पनिशर एक साथ मिल जाएं तो फिर तो दिल्ली मुंबई जैसा हाल हो जाएगा। सो वी शुड अंडरस्टैंड। सिक्स्थ इज पावर टू कोऑपरेट, सहयोग करने की शक्ति। इट इज द एबिलिटी टू गिव अटेंशन, टाइम, एक्सपीरियंस, विजडम इन द सर्विस ऑफ अदर्स एंड टू वर्क अलॉन्ग विथ along with them. जो avoider होता है, जो punisher होता है competitor में, सहयोग करने की शक्ति होनी चाहिए. गाड़ी से उतर कर उनसे बात करें, उनको engage करें. Power of judgment, जिसको हम कहते हैं निर्णय करने की शक्ति. This is the ability to assess the quality in choices, decision and actions in yourself and others. ये भी बहुत जरूरी है. हर driver में judgment power होना बहुत जरूरी है. और अंतिम है जिसको हम कहते हैं the power to टॉलरेट, सहन करने की शक्ति. जैसे आम के वृक्ष में हम पत्थर फेंकेंगे तो आम का वृक्ष हमें मीठा फल देता है, वैसे ही पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इंटरनल इवेंट्स पॉजिटिवली येट नॉट अफेक्टेड बाय देम. ये भी कॉम्पिटिटर, टीचर, पनिशर, नो इट ऑल के अंदर होना बहुत जरूरी है. लास्ट जो रूल है हम कहते हैं द बेस्ट गोल्डन सेफ्टी रूल इज, जो शक्ति प्रदान कर सकता है, ये अष्ट शक्तियां हैं, वो है ईश्वर पिता परमात्मा. जो आगे आने वाले सत्रों में आपको बहुत अच्छी तरह बताया जाएगा कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ वो शक्तियां लेता हूं और अपने जीवन को बनाता हूं. कर सकते हैं, करेंगे, अष्ट शक्तियों को धारण करेंगे. कैसे समझ में आएगा कि आपके अंदर अष्ट शक्तियां हैं? चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, उससे पता चल जाएगा आपके अंदर अष्ट शक्तियां हैं या नहीं. दोनों हाथ ऐसे करिए दीदी, एक मिनट. हाँ, दोनों हाथ ऐसे करिए, ठीक है? सब लोगों ने किया? चलिए कैमरा वाले भैया ऑडियंस को दिखाइएगा. इसको अपने ओठों के किनारे रखिए. वेरी गुड, किया सब लोगों ने? एक माता जी हाथ ऐसे करते, माइक है मेरे हाथ में, दोनों हाथ से करिए, ठीक है ना? ऊपर करिए, चेहरा मुस्कुराते हुए. हां, चेहरा ऐसे ही रखकर हाथ नीचे कर लीजिए. एक छोटा सा निवेदन है, कल दोपहर के 12 बजे तक ऐसे ही रहिए, इससे पता चल जाएगा कि आपके अंदर अष्ट शक्तियां हैं, कैसी भी परिस्थिति हो. कर सकते हैं पक्का? जो कर सकते हैं हाथ ऊपर उठाइए. क्या बात है, कोशिश करेंगे, क्या बात है. अभी जाएंगे दोपहर का भोजन खाने के लिए, मान लीजिए थाली में रोटी, दाल, चावल, सब्जी और सब्जी भिंडी की बनी, मुस्कुराना भिंडी की सब्जी को देखकर, क्योंकि शक्तियां हमारे अंदर है. विल पावर आज जागृत किया मैंने, ठीक ना, सदा मुस्कुराता रहूंगा. और अपनी पत्नी को, पति को, आपके दोस्त जो है उनको कहना आई लव यू, तू खा ले पूरा भिंडी की सब्जी. मैं दाल के साथ खा लूंगा, मैं ऐसे ही मस्त रह लूंगा, लेकिन गाली नहीं दूंगा, इरिटेट नहीं होगा, पनिशर नहीं बनूंगा, अवॉइडर नहीं बनूंगा, टीचर नहीं बनूंगा, वो नहीं बनूंगा, मैं फिलोसोफर बनूंगा, समझूंगा. ब्रह्मा कुमारीज वालों को भिंडी की सब्जी पसंद है, इनको ये नहीं पता है कि मुझे पसंद नहीं है, बट बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिल ही सकता है. कर सकते हैं, पक्का मुस्कुराएंगे. आप, बारिश हो रही है, गाड़ी नहीं है, छाता लाना भूल गई, आप भूल गई छाता, नहीं तुम क्यों भूल गई छाता लाना, तो आप उनको बोलना भीगने का मौका मिला है, ठीक है ना? कोई भी परिस्थिति हो, एक्सीडेंट, सेफ रहने का आधार इनर विल पावर पे डिपेंड करता है, बाहर परिस्थिति पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? मैं यही चाहूंगा कि आप बहुत सुरक्षित रहें, बहुत सफल रहें, सिर्फ आप ही नहीं रहें, आपके परिवार जन भी रहें, आपका जहां से आप आए हैं वो शहर भी बहुत सुरक्षित हो. इन शुभ आशाओं के साथ आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. एक मिनट मेडिटेशन करेंगे, सीधे बैठिए, मन को थोड़ा साइलेंस करें. मन का स्टीयरिंग, मन का ब्रेक, मन का एक्सेलरेटर, मन की दिशा, हल्के होकर के बैठे, सीधे बैठे, आंखें बंद करना है, आंखें खोलकर जैसा भी आप करना चाहें, बी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन. मैं कुछ आपको बताऊंगा, उसको सुनना, उसको महसूस करना, ठीक है? चलिए, आपको रिपीट नहीं करना है, बस फील करना है. ओम शांति. मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं, इजी हूं, सेफ हूं, सकारात्मक हूं, सुरक्षित जीवन जीना मेरे लिए बहुत आसान है, और मैं आज से जीवन का और सड़क का दोनों यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए जिम्मेवार हूं। आई एम अ सेफ पर्सन, आई एम अ फिलोसोफर, आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई अंडरस्टैंड अदर्स, आई अंडरस्टैंड डिफिकल्ट सिचुएशंस, आई अंडरस्टैंड द शॉर्टकमिंग्स ऑफ अदर्स, आई अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग इन इंडिया, बट इट इज ओके। आई हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ माई फीलिंग्स एंड इमोशंस। मैं प्रॉब्लम को और बढ़ाऊंगा नहीं, मैं अपने शक्ति अनुसार जितना हो सकता है उतना दूसरों के जीवन से समस्या कम करने का प्रयास करूंगा, समझने का प्रयास करूंगा। उसके लिए मेरे पास आंतरिक शक्तियां हैं। मैं ईश्वर परमात्मा से योग लगाकर इन आंतरिक शक्तियों को धारण कर सदा मुस्कुराता रहूंगा, खुश रहूंगा, शांत रहूंगा, अच्छा रहूंगा और दूसरों को भी खुशियां बांटूंगा, शांति का दान दूंगा, सेफ रखने का प्रयास करूंगा। लाइफ इज गुड, लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, लाइफ इज सेफ, लाइफ इज सक्सेसफुल एंड माई जर्नी ऑफ दिस लाइफ इज वेरी गुड। ओम शांति। बहुत प्यार से कहें ओम शांति। आंखें खोलें, हाथ को रब करें अच्छी तरह, पूरे चेहरे को लगाएं, माथे को लगाएं, दोनों हाथ से करें, गाल को, नाक को, मुख को, चिन को। गुड न्यूज, फेयर एंड लवली लगा दिया। कल दोपहर के 12 बजे तक फेयर रहना और लवली भी रहना। थैंक यू। ओम शांति। गॉड ब्लेस।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भाई जी, आपने सच कहा कि सुरक्षित मनुष्य ही सुरक्षा के नियम का पालन कर सकता है और इसके लिए चाहिए आंतरिक शक्ति, इनर पावर।